नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉर्डन ब्लेक की द एसेंशियल्स ऑफ AI डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स एक आरंभिक स्तर की तकनीकी मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत पुस्तक है। इसका घोषित उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के बुनियादी संबंधों को सरल भाषा में समझाना है। उपलब्ध विवरण के अनुसार पुस्तक छोटे दैनिक अध्ययन सत्रों, हाथों से करने वाले अभ्यासों और वास्तविक दुनिया के उपयोगों के माध्यम से उन्नत AI कौशल की ओर बढ़ने का रास्ता सुझाती है। इसे किसी विशेष प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क, शोध पद्धति या जटिल गणितीय पाठ्यक्रम की निर्णायक संदर्भ पुस्तक मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि सार्वजनिक रूप से विस्तृत विषय सूची या स्वतंत्र समीक्षाएं उपलब्ध नहीं है। फिर भी इसका विषय क्षेत्र स्पष्ट है। यह पाठक को डेटा से पैटर्न सीखने वाली मशीनों की मूल धारणा, परतों वाले न्यूरल नेटवर्क्स की भूमिका और इन तकनीकों के व्यावहारिक प्रयोगों से परिचित कराना चाहती है। इसलिए इसका मूल्य मुख्यतः अवधारणात्मक प्रवेश द्वार और नियमित छोटे कदमों वाली सीखने की शैली में है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और AI के बीच आवश्यक भेद। पुस्तक के शीर्षक और उपलब्ध परिचय का पहला उपयोगी संकेत यह है कि यह है AI। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को एक ही अर्थ वाले शब्दों की तरह नहीं रखती। AI व्यापक क्षेत्र है जिसमें ऐसी प्रणालियां आती है जो निर्णय, वर्गीकरण, पूर्वानुमान, भाषा प्रसंस्करण या समस्या समाधान जैसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करती है। मशीन लर्निंग AI के भीतर वह दृष्टिकोण है जिसमें नियमों को पूरी तरह हाथ से लिखने के बजाय मॉडल को उदाहरणों से पैटर्न सीखने दिया जाता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का वह भाग है जो कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए जटिल संकेतों से प्रतिनिधित्व सीखता है। शुरुआती पाठक के लिए यह भेद इसलिए जरूरी है कि वह हर AI उत्पाद को डीप लर्निंग ना माने और हर डेटा आधारित कार्य के लिए गहरे नेटवर्क को अनिवार्य ना समझे। समस्या का प्रकार, उपलब्ध डेटा, अपेक्षित सटीकता, व्याख्येता और कंप्यूटिंग संसाधन सभी विधि के चुनाव को प्रभावित करते हैं। इस आधारभूत नक्शे के बिना तकनीकी शब्दावली याद तो रह सकती है, पर मॉडल क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है यह समझ विकसित नहीं होती। पुस्तक का आरंभिक लक्ष्य इसी वैचारिक दूरी को कम करना प्रतीत होता है। दूसरा, न्यूरल नेटवर्क्स में परतें, वजन और डेटा से सीखने की प्रक्रिया। न्यूरल नेटवर्क का मूल विचार इनपुट को सीधे उत्तर में बदलना नहीं, बल्कि बीच की परतों में उपयोगी विशेषताओं का रूपांतरण करना है। उदाहरण के लिए, किसी चित्र, ध्वनि या पाठ से जुड़ी समस्या में आरंभिक स्तर अपेक्षाकृत सरल संकेतों को पकड़ सकता है, जबकि आगे के स्तर अधिक जटिल संयोजन पहचानते हैं। नेटवर्क में कनेक्शनों के वजन यह तय करते हैं कि किसी संकेत को कितनी अहमियत मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान मॉडल अपने अनुमान और सही उत्तर के अंतर को मापता है। इसी त्रुटि के आधार पर वजन बदले जाते हैं ताकि अगले अनुमान बेहतर हो सके। इस प्रक्रिया की भाषा में इनपुट, आउटपुट, परत, सक्रियण, हानि और अनुकूलन जैसे शब्द आते हैं। एक शुरुआती मार्गदर्शिका में इनका अर्थ समझना कोड लिखने से पहले की आवश्यक तैयारी है। साथ ही यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क समझ के अर्थ में मनुष्य जैसा ज्ञान नहीं बनाता। वह प्रशिक्षण डेटा में मौजूद सांख्यिकीय नियमितताओं का उपयोग करता है, इसलिए डेटा की गुणवत्ता, लेबलों की विश्वसनीयता और उदाहरणों की विविधता सीधे परिणामों को प्रभावित करती है। उपलब्ध विवरण में हाथों से करने वाले अभ्यासों का उल्लेख इस अवधारणा को केवल परिभाषा तक सीमित न रखकर सीखने और अनुमान के चक्र से जोड़ने की मंशा दर्शाता है। तीसरा, छोटे दैनिक अध्ययन सत्रों से उन्नत AI कौशल तक क्रमिक प्रगति। पुस्तक की विशिष्ट प्रस्तुति इसका मिनट्स अ डे वाला अध्ययन वादा है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह नहीं कि थोड़े समय में डीप लर्निंग की जटिलता समाप्त हो जाती है। अधिक यथार्थवादी अर्थ यह है कि सीखने को छोटे, नियमित और क्रमबद्ध हिस्सों में बांटा जाए। AI में शुरुआती भ्रम अक्सर इसलिए पैदा होता है कि पाठक एक साथ गणित, प्रोग्रामिंग, डेटा, मॉडल और अनुप्रयोग समझने की कोशिश करता है। छोटे सत्र अवधारणाओं को अलग अलग ग्रहण करने का अवसर दे सकते हैं। पहले समस्या और डेटा को समझना, फिर मॉडल के इनपुट और आउटपुट पहचानना, उसके बाद प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन की भूमिका देखना सीखने का अधिक टिकाऊ क्रम है। नियमितता यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीकी शब्दों का अर्थ तभी स्थिर होता है जब उन्हें बार बार उदाहरणों से जोड़ा जाए। हालांकि शीर्षक में उन्नत कौशल का संकेत है, ऐसे कौशल के लिए समय, अभ्यास और वास्तविक परियोजनाओं की जरूरत बनी रहती है। अतः पुस्तक को त्वरित विशेषज्ञता के दावे के बजाय प्रवेश स्तर की अध्ययन लय बनाने वाले संसाधन के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। यह दृष्टि पाठक को निष्क्रिय जानकारी संग्रह से हटाकर सीमित दायरे वाले अभ्यास, प्रश्न पूछने और परिणाम जांचने की आदत की ओर ले जा सकती है। चौथा, हाथों से अभ्यास और वास्तविक अनुप्रयोगों को जोड़ने का शैक्षणिक ढांचा। उपलब्ध पुस्तक विवरण इसे हाथों से करने वाले अभ्यासों और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से जुड़ी शुरुआती गाइड बताता है। इस प्रकार के ढांचे का महत्व यह है कि AI को केवल अमूर्त तकनीक के रूप में नहीं बल्कि इनपुट, लक्ष्य और परिणाम वाले कार्यप्रवाह के रूप में देखा जाए। किसी भी मशीन लर्निंग अनुप्रयोग में पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि समस्या क्या है, क्या मॉडल को श्रेणी चुननी है, कोई संख्या अनुमानित करनी है, पैटर्न पहचानना है या भाषा संबंधी प्रतिक्रिया तैयार करनी है। फिर उचित डेटा, सफलता की कसौटी और त्रुटि के संभावित स्रोत पहचाने जाते हैं। अभ्यास का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब पाठक मॉडल के उत्तर को केवल प्रभावशाली परिणाम मानने के बजाय जांचने योग्य आउटपुट की तरह देखे। गलत अनुमान, अधूरा डेटा और पक्षपाती उदाहरण सभी सीखने के अवसर है। डीप लर्निंग के वास्तविक प्रयोग अक्सर चित्र पहचान, वाणी, पाठ और अनुशंसा जैसे क्षेत्रों से जोड़े जाते हैं, लेकिन किसी अनुप्रयोग की उपयोगिता उसके संदर्भ पर निर्भर करती है। इसलिए अभ्यासों का शैक्षणिक उद्देश्य केवल मॉडल चलाना नहीं बल्कि यह समझना होना चाहिए कि डेटा से निकला निष्कर्ष कहां विश्वसनीय है और कहां सावधानी मांगता है। पुस्तक की घोषित व्यावहारिक दिशा इस समस्या केंद्रित सोच के लिए उपयोगी आधार दे सकती है। अंत में शुरुआती AI शिक्षा में सीमाएं, मूल्यांकन और जिम्मेदार समझ। AI और डीप लर्निंग की आधारभूत शिक्षा में केवल क्षमता पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। किसी मॉडल का आउटपुट प्रशिक्षण डेटा, चुने गए लक्ष्य और मूल्यांकन के तरीके से आकार लेता है। यदि डेटा सीमित, असंतुलित या गलत लेबल वाला है तो तकनीकी रूप से सफल दिखने वाला मॉडल भी अविश्वसनीय परिणाम दे सकता है। इसी तरह प्रशिक्षण उदाहरणों पर अच्छा प्रदर्शन यह साबित नहीं करता कि मॉडल नए उदाहरणों पर भी उतना ही अच्छा काम करेगा। इस अंतर को समझना ओवरफिटिंग, सामान्यीकरण और परीक्षण की जरूरत तक ले जाता है। एक आरंभिक पाठक के लिए जरूरी प्रश्न है, मॉडल किस डेटा पर सीखा, किस प्रकार की गलतियां कर सकता है और सफलता को किस मापदंड से आंका गया है। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पुस्तक के इन विषयों पर विस्तृत कवरेज की पुष्टि नहीं करती, इसलिए इसे इसके घोषित परिचयात्मक दायरे के संदर्भ में ही रखना चाहिए। फिर भी न्यूरल नेटवर्क्स को समझने का जिम्मेदार तरीका यही है कि उन्हें अचूक निर्णयकर्ता ना माना जाए। वे पैटर्न आधारित उपकरण है जिनकी उपयोगिता उचित डेटा, स्पष्ट कार्य परिभाषा, स्वतंत्र मूल्यांकन और मानवीय निगरानी से बढ़ती है। यह सीमा बोध पाठक को प्रचारात्मक AI दावों और वास्तविक तकनीकी क्षमता के बीच अंतर करने में मदद करता है। निष्कर्ष में, द एसेंशियल्स ऑफ AI डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होती है जो AI शब्दावली से परिचित होना चाहते हैं, लेकिन अभी भारी गणित, शोध पत्रों या विस्तृत प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम से शुरुआत नहीं करना चाहते। विद्यार्थी, गैर तकनीकी पेशेवर, नए उत्साही पाठक और वे लोग जो AI आधारित उत्पादों को अधिक समझदारी से परखना चाहते हैं, इसके घोषित शुरुआती ढांचे से लाभ ले सकते हैं। इसका संभावित व्यावहारिक लाभ अवधारणाओं के बीच सही संबंध बनाना है। पाठक समझ सकता है कि मशीन लर्निंग डेटा से कैसे सीखती है, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स क्यों उपयोगी होते हैं और किसी मॉडल के परिणाम को जांचना क्यों आवश्यक है। पुस्तक का अलग पक्ष इसका संक्षिप्त, दैनिक अध्ययन आधारित और अभ्यासोन्मुख प्रस्तुति वादा है, जहां अनेक डीप लर्निंग पुस्तकें गणितीय विस्तार, विशिष्ट फ्रेमवर्क या पेशेवर मॉडल निर्माण पर केंद्रित होती है। यह शीर्षक पहले समझ और अध्ययन नियमितता बनाने की दिशा में रखा गया है। फिर भी पाठक को इसकी सीमा स्पष्ट रखनी चाहिए, केवल छोटे पाठों से उन्नत AI दक्षता स्वतः नहीं आती। आगे डेटा प्रबंधन, प्रोग्रामिंग, गणित, मॉडल मूल्यांकन और परियोजना अनुभव की जरूरत होगी। इसे पूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण के विकल्प के बजाय एक आरंभिक आधार, शब्दावली सहायक और आगे की संरचित शिक्षा के प्रवेश बिंदु के रूप में देखना सबसे संतुलित निष्कर्ष है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉर्डन ब्लेक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।